ایک مرتبہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ میرے شیخ اور مرشد حضرت والا کا موریشس کا سفر تھا اور یہ موریشس ایک جزیرہ ہے جو کہ افریقہ کی طرف ہے. اگر نقشے میں دیکھے تو پاکستان کے نیچے افریقہ ہے اور افریقہ کے دائیں طرف سمندر کے درمیان میں یہ جزیرہ ہے. تو ایک عالم نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اپنی مجبوریوں کا ذکر کیا, کچھ عذر پیش کیے اور رخصت لی. ساؤتھ افریقہ میں سے حضرت کے پاس کئی علماء ٹھہرنے کے لیے آئے تھے, تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کی مجبوری ہے, بہرحال یہ جا رہے ہیں, لیکن اس طرح ہر آدمی نہ کرے, سب نہ چلے جائیں, ایک 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 کر کے سب چلے گا. اور شیخ جو ہے وہ اس وقت حضرت سمندر پہ تشریف فرماتے, فرمایا شیخ سمندر میں اکیلا رہ جائے اور سارے ایک ایک کر کے سب بھاگتے چلے جائیں. تو حضرت والا رحمت اللہ فرمائے کہ یہ ترقو کا قائمہ نہیں ہے کہ جیسے اس آیت میں ذکر کیا, جو واقعہ بھی نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قید کا زمانہ تھا, خطبے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو غلے کے اونٹ آ گئے. ابھی اس وقت تربیت نہیں ہوئی تھی تو نئے نئے مسلمان تھے تو سب بھاگے کہ ایسا نہ ہو غلہ ختم ہو جائے, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ ترقو کا قائمہ کہ آپ کو کھڑا چھوڑ گئے اور چند صحابہ رہ گئے تھے. بس اس پر تفقہ ہوئی نا کہ حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ ایک ایک کر کے سب چھوڑ کے بھاگ جائے, کہ شیخ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور سارے ایک 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 کر کے بھاگتے چلے گئے. فرمایا یہ بھی تو وہ ترقو کا قائمہ ہے, یعنی گویا کیا مطلب, اس کو اکیلا چھوڑ کے نہ چلا جائے. اس طرح سبھی چلے گئے تو پھر دین سیکھنے والا, پھر وہ شیخ کی نسبت کس میں منتقل ہوگی؟ اصل بات یہ ہے. اور اس چیز کو اس لیے ادب سکھایا کہ ایک ہے دین سیکھنے کا ادب یہ ہے کہ ایک تو اپنی راحت کو دیکھنا ہے, ایک ہے شیخ کی راحت کو دیکھنا ہے. اب مثلا شیخ تشریف فرمایا, ایک آدمی آیا وہ چلا گیا, دوسرا آیا بیٹھا وہ چلا گیا. اب ہر آدمی مان لو 15-15 منٹ بھی بیٹھا, 10 آدمی آئے تو 15 منٹ کے حساب سے 2.5 گھنٹے ہو گئے. اب وہ تو 15 منٹ تازہ دم ہو کے آیا, اپنی ضرورت ہی چلے گیا. اب کوئی ملنے کے لیے آتا ہے کہتا ہے اچھا بھائی اب آرام کروں گا, کہتا ہے دیکھو آپ ہمیں وقت نہیں دیتے, آپ ہمیں وقت نہیں دیتے. تو حالانکہ وقت تو دیا لیکن اب وہ آ رہے ہیں تازہ تازہ دم ہو کے آ رہے ہیں. سب آدمی اپنی آرام اپنی راحت کو دیکھا. مثلا کبھی بیان کے لیے بلاتے ہیں تو بیان کے لیے لینے بھی جہاں بلائیں گے وہاں پہنچ جائیں گے, اور جب واپسی کا وقت آئے گا وہیں سے رخصت کر دیں گے کہ جی میری مجبوری ہے میری وہ ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر دین کا فائدہ نہیں ہوتا, ایسے لوگوں کو پھر دین کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ ادب ہے, ادب یہ نہیں ہے کہ جناب چھوڑا. اور نمبر ایک تو یہ کہ سب چھوڑ کے نہ چلے جائیں, اور نمبر دو یہ کہ ادب یہ ہے کہ دین سکھانے والے کی راحت کا خیال کریں, دین سکھانے والے کی راحت کا بھی خیال کریں. یہ نہیں کہ ہر آدمی تو تازہ دم ہو کے آیا وہ تازہ تازہ دم ہو کر واپس چلا گیا کہ جی اب تو میری مجبوری, اور وہ وہی کا وہی بیٹھا ہے, پھر دوسرا آ گیا پھر تیسرا آ گیا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ सारे तो ताजा दम होके आ रहे और वो वही का वही है। अल्लाह ताला अपने क्रम से फहम अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने क्रम से अदब अता फरमाए। चलो पढ़ो।
तो अल्लाह के गजब की आग बरस जाती है, उनके पीछे सर बज गए हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला ने इस आयत से साबित किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दे रहे थे तो कड़े थे।
के लिए कहने का है कि जो कह सकता हो, हर आदमी तो ये हिम्मत नहीं है ना, तो जो जो नहीं कह सकता है वो खामोशी से चला जाए। किसी ने अगर कहा तो फिर उसके तो लते ले लेंगे। मुस्लिम खानदान के चाचे मामे बैठे हुए और इसने कह दिया ये बात, तो वो तो है, वो लते लेंगे कि बस बड़ा आया। से उसका एक खामोशी से उठ के चला जाए बस।
फोटोग्राफी शैतानी अमल है। तीसरी सूरत यह है कि दावत से वदीना काते काते अचानक फोटोग्राफर की जुमात आ गई। अफसोस इस जमाने में तो लोग नाजायज को नाजायज ही नहीं समझते, बीमारी को बीमारी नहीं समझते, शैतानी कामों को शैतानी काम नहीं समझते। कहते हैं कि ये सब मौजूद की बनाई हुई बातें हैं, हम कोई बुद्ध
थोड़ी। यह हज़रत उस जमाने में फरमा रहे, अब का हाल देखिए तो। बल्कि वो अखबार में वो खबर आई कि एक अफ्रीका का जादूगर था, वो मुसलमान हो गया, तो उसका कुछ इंटरव्यू लिया, जादू के मुताल्लिक कुछ बातें पूछी, तो उस बातों में से उसने ये बात भी कही कि ये जो लोग अपने प्रोफाइल में अपनी तस्वीरें लगाते हैं ना, इससे भी जादू मुमकिन है, क्या इससे भी जादू होता है? जो प्रोफाइल में मुख्तलिफ कंप्यूटर के प्रोग्रामों में जो प्रोफाइलों में लोग तस्वीर लगाते हैं, क्या इससे भी जादू हो जाता है? लो जी, अब जादू के डर से लोग हटाएंगे, अल्लाह ताला की नहीं माननी।
हम कोई बुत थोड़ी बना रहे हैं, वो समझते हैं कि बस मिट्टी की मूर्ति और बुत वगैरह बनाना मना है। हालांकि हदीसों में सराहतन मौजूद है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर एक पर्दा था, उसमें छोटी छोटी तस्वीरें बनी हुई थी। ये तस्वीरें पर्दे पर थी, संगमरमर या मिट्टी के बुत नहीं थे। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप सल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन सबसे ज्यादा आजाद मुसव्विर को होगा, और जब तक वो पर्दा नहीं हटा दिया गया आप सल्लम अंदर दाखिल नहीं हुए। जहाँ तस्वीर कशी हो रही होती थी वहाँ अल्लामा बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह डंडा लेकर तस्वीर बनाने वालों को दौड़ा लेते थे।
वाह, ये हर एक का वो काम नहीं है। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया था कि एक बुजुर्ग थे, तो उनको सताने के लिए कुछ शरारती लोगों ने क्या किया कि उन बुजुर्ग के रास्ते में नाच गाने का प्रोग्राम रख लिया और एक फाहिशा औरत को बुलाया। अब जब वो बुजुर्ग नमाज को निकले, रास्ते में ये मामला नजर आया तो बहुत तकलीफ हुई, लेकिन नमाज पढ़ने चले गए। जब नमाज पढ़ के वापस आए तो फरमाते हैं कि बर्दाश्त नहीं हुआ, बस जूती उतारी, जूती हाथ में ली, अंदर दाखिल हुए और वो जो नाचने वाली और गाने वाली थी सीधा उसकी खोपड़ी बरसाना शुरू कर दी उस फाहिशा औरत की, और वो सारा प्रोग्राम धर्म भरम हो गया। वो तशरीफ ले गए, अब लोगों ने उस औरत को कहा कि तुम इन पर केस करो, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करो, आजकल हमारा जज आया हुआ है। इस बुजुर्ग को भी मुल्ला को मजा चकाते हैं, आजकल हमारी हुकूमत है, चलो इसको अदालत के चक्कर लगवाते हैं। तो उस औरत ने एक अजीब बात बोली, फाहिशा औरत थी, उसने कहा कि इस शख्स का तकवा देखो, अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की अजमत देखो कि ये मखलूक से नहीं डरा, किसी की परवाह नहीं की, और इसने भरे उसमें मुझे जूते मारे। इससे पता चलता है कि ये शख्स साहिब नस्बत और अल्लाह वाला है। कहा मैं अल्लाह वालों से दुश्मनी लेके, अल्लाह वालों से दुश्मनी लेके कि मैं दुनिया में और आखिरत में चुपचैन से नहीं रह सकती, अगरचे मैं गुनहगार हूं। लिहाजा उस औरत ने मुकदमा करने से इनकार कर दिया। तो ये होता है इखलास, लेकिन नाजरा बुए राजरा रुए बायत हम चुवर्त, नाजरा रुए बायत हम चुवर्त। नाज करने के लिए वो चेहरा चाहिए जो मिसल गुलाब के हो, वर्द गुलाब को कहते हैं। नाजरा रुए बायत हम चुवर्त, नाज करने के लिए भी फूल जैसा चेहरा चाहिए। दादा ये जूते मारना हर एक की बात नहीं है, ये तो बस किसी किसी की वो है। जैसे वो बुजुर्ग थे हजरत बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, माशाल्लाह, हमारे शेख का भी यही हाल था, सुभानअल्लाह। हजरत फुलपुरी भी ऐसे ही थे, सुभानअल्लाह। अच्छा देखो भाई, एक हदीस शरीफ कभी चलो, وقال عليه الصلاة والسلام ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره فإن أتمها عرجا بها وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه أو كما قال عليه الصلاة والسلام। तो इस हदीस शरीफ का मफहूम यह है कि जब कोई नमाज पढ़ता है तो एक फरिश्ता उसके दाएं और एक फरिश्ता उसके बाएं आ जाता है, गोया कि वो नमाज की लज्जत और उसके नमाज का तोहफे को वसूल करने पहुंच जाता है। और वो एहतमाम से कि वो बंदा जब नमाज पढ़ रहा है तो एहतमाम से उसके पास आ जाता है कि चलो इतनी अजीम तोहफा है और इतनी अजीम इबादत में मशगूल है। और अगर वो नमाज को उसके खुशू के साथ, सुन्नतों के साथ और इहतमाम के साथ पढ़ता है तो वो उसको लेकर आराजा भी हा, उसको लेकर आसमानों पे चढ़ जाते हैं कि ले जाने का तोहफा है भाई। और वइल्लम युतिम्महा, और अगर वो उसको नमाज में इधर उधर देख रहा है, खेल रहा है, बेतवज्जोही से पढ़ रहा है और गोया नमाज को, नमाज का हक अदा नहीं कर रहा, तो फरमाते हैं जराबा बिहा अला वजही, उसी नमाज को उठा के उसके मुंह पे दे मारते। तो इसलिए वो जो फरमाया कद अफलहल मुमिनून अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिउन, के मोमिनीन फला पा गए। सबसे पहले उन मोमिनीन की सिफात में कि नमाज में उनके खुशू होता है, इसको जिक्र फरमाया। पता चला नमाज को उमदगी से पढ़े, नमाज को उमदगी से पढ़े, और नमाज की उमदगी में ये बात भी शामिल है कि उस नमाज को उससे पहले जो वुजू है वो वुजू एहतमाम से करें, अच्छी तरह से वुजू करें, वुजू में एहतमाम से। जैसे उस एहतमाम में ये बात भी दाखिल है कि अगर नाखून बड़े हों तो नाखून में पानी पहुंचाए, और उंगलियों का खिलाल करे, पांव की उंगलियों का खिलाल करे ताकि पानी अच्छी तरह से पहुंच जाए, और एड़ियों को भी अच्छी सजा दे इसे धोए, और कोनी समेत अच्छी तरह से, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब अगर पानी लेके ऐसे बहा दिया तो जगह खुश्क रह जाती है, सूखी रह जाती है। इसलिए दलक यानी उसको मलना ये भी सुन्नत है, पानी लिया उसको ऐसे से मल रहा है, ये मलना ये भी सुन्नत है, इसका भी एहतमाम करें, क्योंकि अगर उसमें कोई कमी रह गई तो फिर यही होगा जराबा भी है आला वजी कि उसके मुंह पे देरी मार दे मारी जाएगी। और उसके बाद फिर नमाज को चाहे मुख्तसर पढ़े, छोटी सूरतें पढ़े, लेकिन अच्छी तरह पढ़े, ये सुन्नत है। पांव कैसे रखने हैं, हाथ कैसे बांधने हैं, रुकू कैसे करना है, रुकू से खड़ा हो इत्मीनान से, सजदा करे फिर बैठे इत्मीनान से, फिर दूसरा सजदा करे, इस तरीके से अपनी नमाज की अदायगी करे, और ध्यान न लगे इसकी परवाह न करे, ध्यान लगाने की कोशिश करे, अपनी तरफ से ध्यान लगाने की कोशिश करे, ध्यान न लगे कोई बात नहीं, हम ध्यान लगाने के मुकल्लफ हैं, लगने के नहीं है। अपनी तरफ से तवज्जो करे, खुसूसन सुन्नतों का एहतमाम करे कि जो सुन्नतें सिखाई जाती हैं, जिसको बताया गया है, जिसको सिखाया जाता है, उन सुन्नतों की तरफ तवज्जो करे, और नमाज में इधर उधर देखना या कपड़ों से खेलना या कोई नमाज के खिलाफ उसकी आजमत के खिलाफ कोई उल्टी हरकत करना, इन चीजों से एहतियात करें। तो फिर वो फरिश्ते जो इतनी दूर से आए हैं एक शौक लेकर, उस नूर की खातिर से, गोया के वो नमाज का नूर भी खास चीज होती है, तो उसको लेकर आराजा बिहा वापस ऊपर चढ़ जाते हैं, उरूज पर चले जाते हैं। तो जिसकी नमाज में उरूज पर जा रही है, जो सलात और जो नमाज उरूज पर जा रही है, तो मुसल्ली यानी नमाज पढ़ने वाला उसकी तरक्की ना होगी। तो पता चला नमाज से तरक्की मिलती है नमाज से, लेकिन वो कौन सी नमाज होगी कि जिस नमाज में जो नमाज उसके हुकूक और उसकी खुशू और उसकी सुन्नतों के एहतमाम के साथ, यानी जो नमाज जिस नमाज जो तमाम सलात जिसको कहा जाता है कि नमाज में एहतमाम हो मुकम्मल हो, तो उसके बरकत से नमाज भी को उरूज मिलता है। तो जब नमाज को उरूज मिलेगा वो तोहफा लेकर जाएगा तो मुसल्ली को ना मिलेगा। अल्लाह ताला अपने करम से। तो देखिए नमाज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक फरिश्ता दाया आ जाता है और एक फरिश्ता बाया आ जाता है, सुभान अल्लाह, यानी उसके लिए कितना एहतमाम है कि वो एहतमाम से एक फरिश्ता दाएं और एक फरिश्ता बाएं खड़ा है। अल्लाह ताला ऐसी नमाज हम सबको नसीब फरमाए, खुशू खुजू के साथ, मोहब्बत के साथ, और अल्लाह ताला अपने करम से अपनी मोहब्बत और आजमत अपना कुर्ब अता फरमाए। यही तो वजह है कि हजरत मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात फरमाई है कि आरिफ की दो रकात गैर आरिफ की 1,00,000 रकात से अफजल है। आरिफ की दो रकात गैर आरिफ की 1,00,000 रकात से अफजल है, वो यही वजह है। अल्लाह ताला ये चीज नसीब फरमाए और ऐसी इबादत और बंदगी अपने करम से नसीब फरमाए। वाखरु दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।